प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए थे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए थे। हमें लगता है पी रहे, हमें लगता है पी रहे, हम संग सराये दे प्रभु तेरे रंग में।
ओम शांति। बाबा ने एक मास का होमवर्क हमको दिया है। अभी 15 को बाबा आ रहे हैं। कौन सा होमवर्क था? मन का मौन, मन शांत, मन की डांस और मन शक्तिशाली। इस मन को कैसे शक्तिशाली बनाएं? बाबा ने कहा था एक हफ्ता मन का मौन और एक मास मन शक्तिशाली। ये मन कैसे शक्तिशाली बन जाए, आज हम इस पर चिंतन, चर्चा, मनन करेंगे। मन के सशक्तिकरण का वो कौन सा डांस है जो हम सभी को करना है? ऐसी वो कौन कौन सी बातें हम करें कि जिससे हमारा मन जैसा अब है वो करने के बाद शक्तिशाली बन जाए, पावरफुल बन जाए। तो इस चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी घटना से करते हैं। जापान के किसी नगर में एक बहुत बड़ा योद्धा था। ये जो योद्धा था बहुत शूरवीर, बहुत शक्तिशाली था। शायद ही ऐसी कोई लड़ाई हो जो उसने लड़ी और न जीती हो। एक दिन ऐसे ही यह योद्धा अपने घर लौटता है और जैसे ही घर पहुंचता है देखता है उसके बिस्तर पर एक चूहा उसे घूर रहा है। ऐसी किसी की मजाल नहीं थी उसे इस तरह निर्भयता से देखने की, और उसे ऐसा लगता है ये चूहा बहुत गुस्से में भी है। तो उसको देखकर उसे भी गुस्सा आता है और जैसी उसकी आदत होती है अपनी तलवार निकालता है और तैयार हो जाता है। सोचता है शायद चूहा डर जाएगा, पर चूहा तो और जोर से जैसे आक्रमण करने के लिए तैयार है और उसको देखता है घूर कर, तो उस योद्धे को और ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में जोर से अपनी तलवार लेता है और उस चूहे पर आक्रमण करता है। और जैसे ही आक्रमण करता है चूहा वहां से छलांग लगा देता है और कहीं और चला जाता है। फिर तो उसको और अधिक गुस्सा आ जाता है। रात भर दोनों का युद्ध होता है, किस किस का? चूहे का और उस पराक्रमी योद्धे का। उसकी तलवार टूट जाती है पूरी तरह से, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, परंतु वो चूहा जैसे कि वैसे अब भी उसे वैसे ही घूर के देख रहा है। योद्धे को बड़ी चिंता होती है कि ये कोई साधारण चूहा नहीं है, हो सकता है कोई भूत प्रेत है। जाकर अपने मित्रों से कहता है कि एक बहुत असाधारण सा और शक्तिशाली चूहा मेरे घर में घुस आया है। सारी रात मैंने उससे तलवार से लड़ाई की, तलवार टूट गई, परंतु वो अब भी वैसा ही है। कोई युक्ति बताओ। उसके मित्र कहते हैं, अरे पागल, चूहे से लड़ने के लिए तलवार थोड़ी ना प्रयोग की जाती है, एक बिल्ली को ले आओ। परंतु तब तक ये खबर तो पूरे शहर में फैल जाती है कि एक असामान्य सी बिल्ली तुमने ये किया कैसे। तो क्या उत्तर दिया होगा उस राजा ये बिल्ली ने? क्या बिल्ली परंतु दिखने में तो साधारण ही थी वो, बाकी बिल्लियों से और थोड़ा ज्यादा ही कमजोर भी थी। फिर ऐसा क्या उसने कर दिया, दिमाग का क्या यूज किया? बाकी बिल्लियों ने भी वही किया था जो इसने किया, दरवाजा खोला देखा, परंतु उस चूहे ने आक्रमण कर दिया। समान उस बिल्ली ने कहा, इसमें राज कुछ भी नहीं है, वो चूहा है और मैं बिल्ली हूं, बस इतना ही काफी है। मेरा स्वभाव है चूहे को मारना और उसका स्वभाव है मरना, कोई राज की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बिल्लियां है विस्मृत है, अपने स्वभाव का ही उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अपने समान में स्थित थी, मैं मास्टर कैट हूं। किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं है, जहां शक्ति है, जहां शक्ति का स्मरण है, जहां शक्ति की स्मृति है, परिस्थितियां, व्यक्ति, माया, विघ्न, सब कुछ उस चूहे की भांति है। तो मन को शक्तिशाली बनाना है। कैसे इस मन को शक्तिशाली बनाएं, इसकी हम कम से कम 15 से 20 बातें देखेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो कह ही दिया, कौन सा? समान। समान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस। लोअर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, ऊंची स्मृतियां। जैसे ही ये ऊंची स्मृतियों में हम स्थित होते हैं, आत्मा में एक अभूतपूर्व बल भरने लगता है। ये संकल्प ही है केवल कि मैं कमजोर हूं, ये मेरे से नहीं होगा। जो जो हम सोचते हैं, हमारा अंतर मन उसे स्वीकार कर लेता है। यदि हम सोचे कि मैं शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, यदि मैं ये हूं, सारी गलतियां, सारा डर, सारी हार, सारी पराजय इस विस्मृति से होती है कि मैं कैसी आत्मा हूं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सबसे पहला पाठ है मैं कौन, अंतिम पाठ है मैं कैसी आत्मा हूं। यदि पहला पाठ है मैं आत्मा हूं, तो अंतिम पाठ है कैसी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, कौन सी शक्तियां मुझ में हैं। ये शक्तियों का जब विस्मरण होता है, हम भूलते हैं, तभी हमारी हार होती है। तो सबसे पहला अभ्यास कौन सा है? समान का अभ्यास। जैसे सुबह भी कहा था, जैसे ही आंख खुलती है, एक तो है शरीर का जगना, दूसरा है समान से आत्मा को जगाओ। मैं कौन हूं, कौन मुझे जगाने आया है, कौन मुझे मिला है, ये स्मृति। कौन सा युग चल रहा है, ये स्मृति। किसके हम बने हैं, यह स्मृति। ये कौन सा परिवार है जिसके हम भाती है, यह स्मृति ही आत्मा में बल भर देगा। जो परिस्थिति है जीवन में, जो समस्याएं हैं, वो फिर छोटी लगने लगेगी, क्योंकि हम हमारा चेतना ऊपर उठ गई है परिस्थितियों से। परिस्थितियों से लड़ने से कुछ नहीं होगा, वो वैसा ही लड़ना है जैसा योद्धा अपनी तलवार लेकर रात भर लड़ते रहा चूहे से, पर परिणाम क्या हुआ? हार गया। चूहा अधिक शक्तिशाली होने लगा, जितना लड़ रहे हैं उतना वो अधिक शक्तिशाली हो रहा है और हम दुर्बल। विधि है ऊपर उठ जाना। जीवन में यदि परिस्थिति है, समस्या है, हम उस समस्या के विषय में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जैसे हमारी विचार की शक्ति को वो समस्या खींच लेती है, वो हल तो होती नहीं है। हम सोचते हैं किसी और व्यक्ति के साथ इसकी चर्चा करें, शेयर करें, उसको बताएं तो शायद ठीक हो जाए, फिर भी नहीं होती। पति सोचता है पत्नी इसमें मदद करेगी, पत्नी सोचती है पति इसमें मदद करेगा, मित्र सोचता है दूसरा मित्र मदद करेगा, परंतु एक तरफ है मनुष्यों की मदद और दूसरी तरफ है भगवान की मदद। यह तो वैसा ही है जैसी दो लहरें आपस में मिल जाए, दोनों ही क्षणभंगुर, ट्रांजिटरी। लहर को समुन्दर से मिलना होगा, ये स्मरण होना होगा कि मैं किसकी लहर हूं, तो उसका संबंध सभी लहरों से हो जाएगा। जब वो एक लहर से केवल संबंध जोड़ती है तो दोनों ही निर्बल हो जाते हैं। जैसे कि कोई एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रहा है, जैसे कोई एक बीमार सोचता है दूसरे बीमार को स्वस्थ करूं, नहीं हो सकता। मनुष्य की मदद और भगवान की मदद, इसमें अंतर है। कौन मेरा साथी है, किसके हम मददगार है, कौन मेरी मदद कर रहा है, यह समान। तो मन को शक्तिशाली बनाने की पहली विधि कौन सी है? समान का अभ्यास। एक बार नहीं, बार बार समान का अभ्यास, बार बार स्वयं को याद दिलाना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किसका हूं। दादी हर क्लास में ये बात कहती ही कहती है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किस लिए। छोटे से शब्द है पर कितनी शक्ति है इन शब्दों में। आत्मा को जगाने वाले, अज्ञान निद्रा से, मूर्छा से सुरजित करने वाले ये शब्द है। तो सबसे पहली विधि हुई समान, दूसरी विधि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, दूसरी विधि है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को जानना। अवचेतन मन में अनंत शक्तियां भरी है। वैज्ञानिक कहते हैं, मनस्विद कहते हैं, हमारा जो मन है, दो मन नहीं है, मन एक ही है, परंतु दो तलों पर काम करता है, एक चेतन एक अवचेतन, एक बाह्य मन एक अंतर मन, एक मेल माइंड एक फीमेल माइंड, एक ऑब्जेक्टिव माइंड एक सब्जेक्टिव माइंड, एक बाह्य चेतना एक अंतर चेतना, एक बाह्य जगत का मन एक अंतर जगत का मन, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड। जैसे हिमखंड होता है, आइसबर्ग, ऊपर जो दिखाई देता है थोड़ा सा ही दिखाई देता है, परंतु वो हिमखंड समुन्दर के नीचे, पानी के नीचे अधिक से अधिक होता है। वैसे ही हमारे मन की जो शक्ति है, कॉन्शियस माइंड की जो पावर है, केवल 10% है, परंतु सबकॉन्शियस की पावर कितनी है? 90%, पर अनटैप्ड, जैसे अभी तक अस्पर्शित है, किसी ने टच नहीं किया है। नहीं तो इस मन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि यदि वो संकल्प कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। दो नियमों की बहुत ज्यादा चर्चा है आज के युग में, एक है लॉ ऑफ बिलीफ और दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम और विश्वास का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि जो संकल्प हम करेंगे वो प्रकृति में जाएगा, प्रकृति की और उस संकल्प की जैसे रिएक्शन हो रही है, और जो जो संकल्प हमने किए वो सारी घटनाएं निर्माण होगी। यदि हम संकल्प करते रहे मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, वो संकल्प प्रकृति में जाएगा, ऐसी ही बीमारियों को आकर्षित करेगा और हम वास्तव में बीमार हो जाएंगे। हम ये सोचते रहे हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, बार बार खुद से कहते रहे, दूसरों को बताते रहे, वो संकल्प वातावरण में प्रवेश कर रहा है और हम और निर्धन बनते जाएंगे। संकल्प संकल्प को आकर्षण कर रहा है, इसे कहा जाता है आकर्षण का नियम। बहुत बड़ी बड़ी किताबें मूवीज इस पर बन रही है, सीक्रेट, आकर्षण का सिद्धांत। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, हम किसी के प्रति निगेटिव संकल्प कर रहे हैं, हम ये सोच रहे उस तक ये पहुंच नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। हम मन ही मन किसी की ग्लानी कर रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव हमारे मन में है। संकल्प में प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो संकल्प वहां तक पहुंचता है, उस आत्मा तक। किसी सन्यासी को, हिमालय पर बैठे हुए किसी सन्यासी को कोई विदेशी व्यक्ति आए और कहने लगा कि आप हमारे देश में चलो, आप कितने सालों से यहां तपस्या कर रहे हो, हमारे देश में अगर चलोगे तो बहुत सेवा हो सकती है। वो तपस्वी कहता है, मैं यहां बैठकर तुम्हारे देश की जो सेवा कर रहा हूं वो वहां आकर भी नहीं कर सकता, मैं संकल्पों से ही सेवा कर रहा हूं। संकल्प में इतना बल है, जिस व्यक्ति तक हम अपने संकल्प पहुंचाने चाहे पहुंचा सकते हैं, टेलीपैथी जिसको कहते हैं, क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, दूर क्या हो रहा है वो देखना, दूर क्या बातें चल रही है वो सुनना, ये सब शक्तियां हैं मन की, साइकिक पावर्स जिसे कहा जाता है, परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी में आते हैं ये सारी बातें, मेटाफिजिक्स। मन में इतनी शक्ति है, हमें पता नहीं बस, क्योंकि हमारे जब तक ये चेतन मन शांत नहीं हो जाता है, अवचेतन जागृत नहीं होता। और जैसे सुबह कहा, दो समय है जब ये अवचेतन संपूर्ण जागृत होता है, एक तो सुबह उठते ही और दूसरा रात को सोते समय। ये जो दो समय है, श्रेष्ठ संकल्प करते हुए उठना और श्रेष्ठ संकल्प करते हुए सोना, हमें बहुत दर्द है, हम ये संकल्प करके सोए कि ये दर्द सुबह उठते ही ठीक हो जाएगा। कमजोर संकल्प ये है कि बुखार जैसा लग रहा है, बाबा को भी पता है हम अमृत वेला उठेंगे ही नहीं, पहले ही संकल्प कर लिया, अभी सुबह हुई नहीं है, अभी सोने जा रहे हैं, थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, पहले ही संकल्प कर लिया कि मैं बीमार हूं, मुझे सिर दर्द हो रहा है, कल मैं नहीं उठूंगा। जगदीश भाई ने अपने एक लेख में लिखा है, कृष्णा अय्यर एक जस्टिस थे भारत के, चीफ जस्टिस, वो मधुबन में आए थे, इंद्रप्रस्थ में ठहरे थे, पांडव भवन शांति स्तंभ के पास जहां दादी अभी रुकते हैं। उनकी आदत थी सुबह 2 बजे उठने की, और वो संविधान लॉ से रिलेटेड किताबें लिखते थे। जगदीश भाई ने लिखा कि मैंने उनको देखा, कैसी आदत बना ली है इस व्यक्ति ने कि रात के कल्चरल प्रोग्राम कुछ भी हो वो सब छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि उनको पता था मेरा रूटीन ऐसा है उसमें ये सब चीजें नहीं चलेगी, चाहे उधर कुछ भी हो, उनका जो समय था सोने का 9:30 बस वो समय होता कि सब कुछ छोड़ के आ जाते, क्योंकि उन्हें ना तो उनको परमात्मा का परिचय, ना आत्मा का परिचय, ना तो ये ईश्वरीय ज्ञान था, वो तो उसी दुनिया के व्यक्ति थे, परंतु फिर भी सेल्फ डिसिप्लिन, कैसी आदत डाल के रखी थी स्वयं को उठने की, चाहे कुछ भी हो तो आदत इस तरह से काम करती है। तो अवचेतन मन को हमने क्या समझा दिया है, क्या उसको बता दिया है, बार बार संकल्प कर करके हमने जो भी कॉन्शियस माइंड में जो भी हम संकल्प लंबे समय तक करते वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। मुरलियों में एक बहुत बार वाक्य आता है, सन्यासी कहते हैं मैं भैंस हूं। फिर उसको कहो इस दरवाजे से जाओ तो कहेगा मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं भैंस हूं। ये क्या हो गया, यहां पे प्रोग्रामिंग हो गई सबकॉन्शियस माइंड की। उसी तरह हमने भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग करके रखी है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ये तीव्र पुरुषार्थ जिसको करना है करे, बाबा कहते हैं बाप समान बनना है, वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, जिसको बनना है बने। हमारे यहां एक भाई थे वो कहते थे मुझे पुरुषार्थ ज्यादा करना नहीं है क्योंकि मैंने अपना पद फिक्स कर लिया है। क्या करूंगा, जब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो गेट पर खड़ा होके अनाउंसमेंट करूंगा, सुनो 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 लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, और बैठ जाऊंगा बस। लक्ष्मी नारायण आए और चले गए। छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, ऊंचा लक्ष्य रखना है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, इंग्लिश में कहावत है, असफलता नहीं परंतु छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, क्राइम है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है, बहुत श्रेष्ठ। 4 बजे उठने का लक्ष्य रखो तो 4:15 हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी लक्ष्य रखना पड़ेगा। 4:45 अगर रखो तो कम से कम 4 बजे तक उठेंगे, 3:30 रखो तो 4:45 तक उठेंगे। जिसने केवल कोई लक्ष्य नहीं रखा, सोचा मुझे जल्दी उठना है बस, तो 6 बजे निश्चित है। संकल्प क्या कर रहे हैं, इस चेतन मन को शांत कर देना, मन के संकल्पों को, तो जो भी बातें डाली जाती है वो सीधा सबकॉन्शियस में जाती है। इसके लिए हमारे जितने योग है वो क्या है, योग अर्थात ही चेतन मन को हम शांत कर देते हैं संकल्पों को, और फिर उसमें जो भी संकल्प हम डालते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ये संकल्प सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है फिर। और इन संकल्पों को मन स्वीकार करे, हां मैं हूं, तुम महान आत्मा हो, ये हमारा समान है। बाबा ने कहा तुम महान आत्मा हो, और कोई दूसरा आके हमें कुछ कह दे, हम मूड ऑफ हो जाए, तो किसकी बात हमने मानी? भगवान कह रहा है तुम महान आत्मा है, दूसरे कह रहे तुम नहीं हो, किसकी मानेंगे, भगवान की या व्यक्तियों की? भगवान कह रहा है तुम पूर्वज आत्माएं हो, भगवान कह रहा है तुम मूल हो, तुम तना हो, तुमसे सारी शाखा उपशाखाओं को पत्तों को शक्ति जा रही है। तो इस अवचेतन मन की शक्ति को समझना है। The powers of the mind are like the rays of the sun. The more focused they are, the more illumined they become. विवेकानंद जी ने कहीं कहा है, मन की शक्तियां है वो सूर्य की किरणों की तरह है, जितनी वो केंद्रीभूत होगी, एकाग्र होगी, चमक उठेगा ये मन। हमारी शक्तियां बिखरी हुई है, जैसे ही वो एकाग्र होगी, ऐसा एकाग्र चित्त मन चाहे किसी भी फील्ड में चला जाए, चाहे ज्ञान योग में चला जाए या संसार में भी चला जाए, वहां उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि मन बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड माइंड है। जैसे ही वो फोकस्ड माइंड होगा, शक्तियां भरेगी उसमें। तो इस अवचेतन मन को समझना है, इस अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करना है, और क्या हम संकल्प करते हैं उस पर ध्यान देना है। ये था सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा, रूहानी ड्रिल। जैसे इन मसल्स को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, जिम में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, वैसे मन भी क्या है, माइंड इज लाइक द मसल। ये आत्मा भी जैसे मसल की तरह है, जितना उसकी एक्सरसाइज करेंगे वो अधिक शक्तिशाली होगी, अगर वो एक्सरसाइज ही नहीं की जाए तो शक्तिशाली नहीं होगी। ये एक बहुत सुंदर किताब है, हम चाहेंगे स्पार्क में ये किताब अवेलेबल है, इसका नाम है अनुभूतियां। इसमें बहुत सारी ड्रिल्स लिखी हुई है अलग अलग प्रकार की, बहुत सुंदर चिंतन है, विजुलाइजेशन इमेजिनेशन है और अलग अलग प्रकार की ड्रिल हर दिन जो करनी है, इसका नाम है अनुभूतिया। तो अगर हो सके तो ये किताब आप ले सकते हैं और हर दिन एक ड्रिल प्रैक्टिस करनी है। एक ही एक योग का प्रयोग हम नहीं करते रहे, एक ही एक प्रकार का योग, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, अलग 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 उसमें वैरायटी हो तो फिर थोड़ी सा मजा आता है। तो रूहानी ड्रिल एक है 500 रूपों का अभ्यास, कभी बाबा कहते हैं 300 रूपों का अभ्यास, कभी कहते हैं केवल आत्मा अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूं और मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही है। छोटा सा प्रयोग है परंतु ये भी आत्मा को बल देता है, क्योंकि ये सारी रूहानी ड्रिल जो है वो आत्मा के तल पर हो रही है, हमें देह के तल से ऊपर उठाती है। एक आधा मिनट या एक मिनट अभी हम सभी अलर्ट होके बैठेंगे और एक छोटा सा संकल्प लेंगे। लाल लाइट, शरीर को इतना स्थिर कर दो कि जहां हाथ रखा है बस वहीं रह जाए। जब तक यदि आत्मा का साक्षात्कार करना है और आत्मा को देखना है और आत्मा का अनुभव यदि करना है तो देह स्थिर हो। तन के इस भव्य भाल पर विराजमान मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं, तपस्वियों में महातपस्वी, योगियों में राजयोगी, मैं एक ज्योतिपुंज हूं, सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां, मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, शिव शक्ति हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। मुझ आत्मा से अनंत शक्तियों की किरणें चौर फैल रही है। स्वयं स्वयं को देख रहा हूं। भ्रुकुटी पर चमकती यह आत्मा एक तेज पुंज बन गई है। मुझसे सारे विश्व में दूर दूर तक इस संसार की हर आत्मा तक शक्तियां प्रवाहित हो रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ओम शांति। केवल आत्मिक स्वरूप में स्थित होना भी ड्रिल है, तो इस ड्रिल को बार बार करना है। अमृत वेले भी करना है, तो नुमा शाम भी करना है, और बीच बीच में जब जब समय मिले तब तब फिर करना है। कितने हो गए? चार। पांचवा कितने हो गए? तीन। चौथा, चौथा है विजुअलाइजेशन, जिसको कहा जाता है मन की आंखों से देखना। जो हम बनना चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं, उसे मन की आंख से पहले ही देख लेना कि ये मैं हूं, ये मेरा लक्ष्य है। विजुअलाइज करना। कई सारी किताबें, बहुत सारी चीजें विजुअलाइजेशन के बारे में लिखी गई है, क्रिएटिव इमेजरी जिसको कहा जाता है। एक है स्थूल आंखों से देखना, एक है मन की आंखों से देखना। यदि हम आपसे कहे कि मधुबन को देखो, पांडव भवन को, तो आंखों के सामने आ गया? आ गया आंखों के सामने? यहां बैठकर मधुबन को देख लेना और मधुबन का अनुभव कर लेना, ये उससे भी शक्तिशाली है वहां जाकर अनुभव करना, है या नहीं है? तो अभी फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे और हम मधुबन के चार धाम की यात्रा करके आएंगे। मधुबन से जब आते हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं ना, तो अभी फिर से मधुबन की यात्रा करने चलते हैं। ये टेक्निक जिसको हमने कहा विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से अनुभव करना कि ये है, मैं वहां हूं, तो वही सब अनुभव होगा। जैसे यहां बैठे बैठे किसी माता को अपना बेटा याद आ जाए तो आंखों से आंसू आ जाएंगे ना, बेटा तो है ही नहीं, वो तो कहीं विदेश में है, पर जैसे याद आती है अभिव्यक्ति चालू हो जाती है, ये कैसे हुआ? तो चाहे वैसे मिलो या मन से मिल लो, वही सब कुछ होगा। इसके लिए इसका बहुत बहुत महत्व है। तो चलते हैं। योग में शरीर को बहुत ज्यादा हिलाना नहीं है, जहां हाथ रख दिया रख दिया, उंगली भी ना हिले। इसके लिए ऐसे पोजीशन में बैठ जाओ जहां हिलने की आवश्यकता ना हो। यहां तक योग में कहा जाता है जबान भी निश्चिष्ट हो जाए, इतना ये स्थिर जब शरीर होगा तो ही तो आत्मा प्रतिबिंबित होगी। यदि हम डोल रहे हैं इधर से उधर उधर से उधर, कैसे आत्मा का साक्षात्कार, ऐसे इस दर्पण में कैसी दिखेगी आत्मा? पहले तो देह स्थिर हो जाए, फिर आत्मा को स्थिर करना। शास्त्रों में कहा है योगी के लिए, बाबा तो कहते ये सहज योग है, लेटे लेटे भी योग कर सकते हो वो दूसरी बात है, परंतु योगियों की जो परिभाषा है, आसन जयी की परिभाषा है, एक ही आसन पर योगियों के लिए कहा जाता है जब 3 घंटे कोई बैठ जाए उसे आसन जयी कहा जाता है। यह तो सारा हठ योग में सिखाया जाता है। बाबा कहते तुम्हारा चलता फिरता योग है, परंतु उसके बाद भी जब हमारा बैठा योग अच्छा होगा तब हमारा चलता फिरता भी हो सकता। हमारा बैठा ही नहीं है, मन ही स्थिर नहीं है, बस शरीर हिलते रहता है, हाथ हिलते रहते, ये मन की अस्वस्थता को ही दिखाता है। एक बार महात्मा बुद्ध का शिष्य जो था आनंद, उसने देखा कि महात्मा बुद्ध जब सो रहे एक ही करवट पर सो रहे, रात को जिस करवट में देखा हाथ जहां था सुबह उठा वहीं था। आश्चर्य से एक दिन आनंद पूछता है कि बताए ये कैसे हो सकता है, क्या आप रात में भी जागते रहते हो, क्या आपको पता है हाथ यहां रखा तो यही है। वो कहते हैं कि आनंद मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे अब करवट लेने की आवश्यकता नहीं। करवटे कौन लेता है रात में, जो बेचैन है, अशांत है, टॉसिंग ऑन द बेड, इधर से उधर, नींद नहीं आती है रात भर, इधर से उधर उधर से उधर, कितना मन अशांत है। जब मन इतना शांत हो जाए तो वो योगी जैसी अनुभूति होती है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और चलते हैं मधुबन की यात्रा करने। लाल लाइट, धूल देह से निकल मैं फरिश्ता, अब चलता हूं अपने घर। यह व्यक्त संसार, यह व्यक्त लोक, ये तत्वों की दुनिया है, ये तत्वों की देह, इस देह से निकल मैं फरिश्ता, आकाश में हूं, देख रहा हूं अपने इस स्वरूप को, एक दिव्य फरिश्ता, डबल लाइट, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूं और बाबा मुझसे कह रहे हैं बच्चे जाओ मधुबन की सैर कराओ, नीचे उतर रहा हूं, कैसी दिव्य अनुभूति है अरावली पर्वत श्रृंखला, यह नैनाभिराम दृश्य, यह शीतल शीतल हवाएं, नीचे उतर रहा हूं आबू पर्वत पर, तपस्वियों की भूमि, कर्म भूमि, ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि, सबसे बड़ा तीर्थ, इस जगत का शोकेस, यह परिवर्तन भूमि, यह वरदानी भूमि, यह देव भूमि, यह मधुर भूमि, उतर रहा हूं नीचे, शांति स्तंभ के पास हूं, बाबा के अव्यक्त महावाक्य याद आ रहे हैं, बच्चे यदि शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना, शांति स्तंभ के सामने मैं खड़ा हूं और शक्तियों की अनगिनत अनंत किरणें मुझ में समा रही है। वहां से उड़, मैं फरिश्ता पहुंच गया हूं बाबा के कमरे में। बच्चे यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना, अनुभव कर रहा हूं बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बच्चे बाप समान भव, मैं फरिश्ता उड़ चला हिस्ट्री हॉल में। बच्चे यदि व्यर्थ संकल्प तेज चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना, अनुभव कर रहा हूं मैं समर्थ बन चला, सारा व्यर्थ, सारी नकारात्मकता समाप्त हो गई है। अब मैं फरिश्ता उड़ चला बाबा की कुटिया में। बच्चे यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूरियान करने कुटिया में पहुंच जाना, अनुभव कर रहा हूं इस दिव्य कुटिया को, इस कुटिया में बैठा मैं महातेजस्वी महातपस्वी, यहां आते ही जीवन की सारी उदासी, सारा दुख, सारा विषाद, सारा अवसाद समाप्त हो गया है। भगवान स्वयं मुझे तिलक दे रहे हैं। उसकी दृष्टि से उमंग उत्साह की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। मधुबन के चार धाम, मधुबन की यह तीर्थ यात्रा, आह कैसा दिव्य प्रकाश, मधुबन की यह भूमि। यह वह भूमि जहां स्वयं भगवान के कदम पड़े हैं। यह वह भूमि है जहां पर यज्ञ की सभी पूर्वज आत्माओं के कदम पड़े हैं। इस तपस्या भूमि में आकर मैं धन्य धन्य हुआ। पुनः मैं फरिश्ता आकाश की ओर उड़ता हूं। धीरे धीरे वापस इस शहर के ऊपर पहुंच जाता हूं और इस हिसार शहर के सभी आत्माओं का आह्वान कर रहा हूं। हे देव कुल की महान आत्माओं, आ जाओ, महान भूमि तुम्हें पुकार रही है, प्रभु प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। मैं फरिश्ता धीरे धीरे पुनः इस देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति। जाके आ गए मधुबन में। कैसा था मधुबन? बहुत बढ़िया था। विजुअलाइजेशन नेक्स्ट। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड, जिसको इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कहते हैं, थैंक यू या धन्यवाद का भाव। ये भाव हमारे जीवन में आ जाए। क्या कहते हैं इसे? धन्यवाद। किसको धन्यवाद करेंगे? एक सबसे पहला धन्यवाद उसको। क्यों धन्यवाद करेंगे उसको? क्या कर दिया उसने? अपना बना दिया। और क्या कर दिया उसने? अपने से मिला दिया। और क्या कर दिया उसने? ज्ञान रत्नों से भर दिया। और क्या कर दिया उसने? अपनी गोद में ले लिया। बाबा ने एक मुरली में कहा है, तुम भक्ति में इतने डूबे थे, तुम्हारा केवल एक बाल ही दिख रहा था, उस बाल को पकड़कर मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। तो एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा था, तुम कहां पड़े थे? फुटपाथ पे कचरे के डिब्बे में पड़े थे, वहां से मैंने आकर तुम्हें निकाला है। ऐसा महान कार्य उसने कर लिया। हमको तो यह भी नहीं पता था कि भगवान कौन है, ये भी नहीं पता था कि उसको याद कैसे करते। उसने खुद आके अपना ही परिचय दिया और उसने ये भी सिखाया कि मुझे ऐसे ऐसे याद करो। हमने तो उसे क्या कह दिया था, वो यहां है, वहां है, सर्वव्यापक है। और उसने क्या कर दिया? अपना परिचय दे दिया। तो सबसे पहला धन्यवाद उसको। दूसरा धन्यवाद पहला शिव बाबा को, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा सभी दादियों को, यज्ञ की सभी पूर्वज आत्माओं को, जिन्होंने अपने जीवन को इस यज्ञ की वेदी पर समर्पित कर दिया, उन सभी को धन्यवाद। और किसको धन्यवाद? दीदियों को धन्यवाद। कौन सी दीदियों को? पीछे बैठी है, एक बार देख लो अपनी दीदियों को, क्या कर दिया इन दीदियों ने? क्या कर दिया? बाबा से मिला दिया। जो पीछे बैठी है सारी दीदियां और जो हमारी बहन जी है, इनको साधारण आत्मा समझने की भूल नहीं करना। कौन है ये सभी? मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो सभी देवियां यहां चैतन्य में उपस्थित है। चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे संसार में, वो भी पढ़ सकते थे, वो भी कमाई कर सकते थे, वो भी नौकरी कर सकते थे, वो भी उच्च पद संसार के हिसाब से प्राप्त कर सकते थे, परंतु अपने जीवन को, अपने यौवन को इस यज्ञ में समर्पित कर देना, क्या वो साधारण हो सकती है? हो सकता है कि यहां बैठे हुए ये समझे कि हम उनसे अधिक बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारी मैच्योरिटी अच्छी है, हम कमाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ अच्छी है, परंतु उन्हें स्वयं भगवान ने चुना है। किसी मनुष्य के लिए वो समर्पित नहीं हुई है, दांव पर लगाया है जीवन को। इसलिए उन्हें साधारण, सामान्य, कम समझदार, कम बुद्धिमान समझने की भूल नहीं करना। हम तो बैठे हैं अपनी कुंडली मारकर अपनी विशेषताओं पर, अपने जीवन पर, वो कैसी आत्माएं होगी जिन्होंने अर्पण कर दिया। कौन से त्याग की आवश्यकता है और कितना बड़ा यह त्याग है, कैसी ये पवित्रता है। संसार की वो आत्मा एक तरफ है, वो स्त्रिया जो वासनाओं की चक्की में पिस रही है, यहां ये आत्माएं हैं अनटच्ड, जिन्होंने पवित्रता को अपना जीवन बनाया है। इस धारणा के आगे, इस समर्पण भाव के आगे संसार की सभी स्त्रियां गौण है, धूल समान है। इसलिए उन्हें साधारण नहीं समझना। स्वामी विवेकानंद ने कभी अपने एक स्पीच में कहा है अमेरिका में, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा, कब कहा है, उनकी मृत्यु हुई थी 1902 में, बाबा आए 1936-37 में, एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, भविष्यवाणी थी ये, एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश देगी। ये वही श्वेत वस्त्र धारिणी, राजयोगिनी, तपस्विनी, राज ऋषि बहने, वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्त जिनके आगे झुक रहे हैं, सर काटने को तैयार है, ऐसी दिव्यता की मूर्तियां, ऐसी पवित्रता की मूर्तियां, तो उन्हें साधारण नहीं समझना। और दूसरे भाइयों की तरफ, यदि कोई व्यक्ति किसी देवी के मंदिर में जाए और उसकी दृष्टि खराब रहे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो उसे खुद ही आत्मग्लानि का भाव होगा, और यदि वो दूसरे लोगों को पता चल जाए कि इसकी दृष्टि खराब है तो लोग क्या करेंगे? फिर मार मार के बाहर कर देंगे। इसलिए ऐसी समर्पिताएं और अर्पिताएं और निवेदिताओं को साधारण नहीं समझना। निमित्त किसने बनाया है? स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया है। अगर उनके मुख से कुछ गलत निकलता भी है, जिम्मेवार कौन है? स्वयं भगवान। इसलिए उन्हें साधारण नहीं समझना। और किसको धन्यवाद करेंगे? अपने लौकिक मां बाप को धन्यवाद। वो नहीं होते तो हम ही नहीं होते। और किसको धन्यवाद करेंगे? इस ब्राह्मण परिवार को। वारे ब्राह्मण परिवार। और किसको धन्यवाद करेंगे? अपने आप को। वारे मैं। बहुत बढ़िया, मेरे भी क्या कहने, पहचान लिया। अब उन आत्माओं का धन्यवाद करना है द्वापर से लेकर अब तक, जिन जिन ने हमें सहयोग दिया। हम बीमार थे जो हमारे हमें देखने आए, जिन्होंने हमारी केयर की, अटेंशन दिया, प्रेम दिया। हम भूखे थे, भोजन दिया। हम प्यासे थे, पानी दिया। हम निर्धन थे, धन से मदद की। उन सभी आत्माओं को फिर से अलर्ट होके बैठना है। इस ड्रिल के बाद हम एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर बैठेंगे। जैसे कहा, शरीर सबसे पहले स्थिर कर दो। जिस जिन के मोबाइल अब भी बज रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें शांत कर दो। मन के मौन के साथ मोबाइल का भी मौन कर दो। इस ड्रिल के बाद हम एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो सभी अलर्ट होके स्थिर बैठना है। लाल लाइट। तख्त पर विराजमान मैं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा, ऐसा भाग्य, ऐसा पद्मा पदम भाग्य मेरे अतिरिक्त इस भूमंडल पर और किसी का नहीं। किस किस को धन्यवाद करूं? देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने स्वयं महाज्योति दीपराज शिव बाबा। बाबा किन शब्दों में तेरा शुक्राना करूं? बाबा तूने क्या से क्या बना दिया? बाबा अंतस की गहराई से, चेतना के गहनतम अनुभव से तुम्हें बारंबार धन्यवाद। देख रहा इस सृष्टि के आदि पिता इस सृष्टि की जगन माता साक्षात जगदम्बा सरस्वती को। बाबा मम्मा कैसे आपका धन्यवाद करूं, कहां नरक में पड़े थे और कहां आपने पहुंचा दिया। देख रहा हूं यज्ञ के सभी पूर्वज ये महान तपस्वी आत्माएं दीदियों को, दादियों को, दादाओं को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका ही त्याग था और ये आपकी ही तपस्या थी और ये आपका ही आह्वान था जिस कारण हम यहां आए। और भगवान से हमारा मिलन हुआ, देख रहा हूं अपने लौकिक मां बाप को, मां को, पिता को, वो जो भी है जैसे भी है उनकी वजह से मैं आज हूं। मुझ आत्मा को इन्होंने ही देह दी है और इसी देह में बैठ मैंने जीवन के परम लक्ष्य को पाया है। चाहे ज्ञानी है या अज्ञानी, अपने मां बाप को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अब देख रहा हूं उन दिव्य देवियों को जिसने मेरा कोर्स कराया, देख रहा हूं उस बहन को जो मुझे मधुबन ले गई, देख रहा हूं उस बहन को जिसने पहली बार मुझे भगवान से मिलाया, देख रहा हूं उस बहन को जिसने मुझे मधुबन की यात्रा कराई, देख रहा हूं उस महान आत्मा को जो रोज मेरी मुरली के द्वारा पालना करती है, जिसने मुझे ब्रह्मा भोजन खिलाया। कैसे धन्यवाद करूं, गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। मेरी यह आध्यात्मिक गुरु जिसने भगवान से मिला दिया, गोविंद का दर्शन कराया, शब्द नहीं। देख रहा हूं उन सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया, ज्ञानी अथवा अज्ञानी, उन सभी को धन्यवाद। देख रहा हूं प्रकृति के ये पांच तत्व, ये भूमि, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, ये पांचों ही तत्व कब से मेरी पालना कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद इस सृष्टि की हर आत्मा को, धन्यवाद इस सृष्टि के कण कण को, धन्यवाद। मेरा हृदय कैसी अद्वितीय शांति से भर गया है, उन सभी को धन्यवाद। जिन्होंने मेरी ग्लानि की, अपमान किया था, कटु वचन कहे थे, उन सभी परिस्थितियों को धन्यवाद जो विपरीत थी। अगर वो ना होते तो मैं इतना शक्तिशाली नहीं होता। इसी अहोभाव के साथ मैं आत्मा पुनः इस देह के भान में आकर वापस अपने चेतन स्वरूप में आती हूं। ओम शांति। जो उठना चाहे उठ सकते हैं, और फिर 3 मिनट के बाद यहीं आ जाएं।